जब भगवान ने गोवर्धन धारण की लीला की और पूरा व्रत भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को रख दिया और सब लोग आनंद उल्लास के साथ भगवान का आलिंगन किए, अपने अपने जैसे संबंध था कि जो सखा थे भगवान के उन्होंने भगवान को आलिंगन किया, जो बड़े थे उन्होंने भगवान को आशीर्वाद दिया और इस तरह से अपने अपने प्रेम सौहार्द से भगवान को कि भगवान के गुणों को गाकर, कृष्ण के गुणों को गाकर सब लोग वृंदावन की तरफ, ब्रज की तरफ लौट पड़े। अब शुरुआत में जिस तरह से इंद्र यज्ञ करने के लिए जैसी इष्टा गोष्ठी हुई थी, वैसे इष्टा गोष्ठी अब कृष्ण के इस अद्भुत कर्म को देखकर ब्रजवासियों के बीच में फैल गई। जितने सारे प्रभु लोग थे, जितने सारे जो गोप लोग थे, जो वरिष्ठ गोप लोग थे, वे एकत्रित हो गए। नंद बाबा भी थे उसमें, उनके भाई थे, या और भी जो ब्रज के जो वरिष्ठ जो गोप लोग हैं, वो एकत्रित होकर चर्चा करने लग गए कैसे ये हम लोग को इतना बड़ा सौभाग्य कैसे है कि एक साधारण हम गोपालों के बीच में इतना अद्भुत कर्म बालक आ गए, ऐसा कैसे हो गया। हम लोग तो ग्वाल बाल है, जो छोटा मोटा व्यवसाय, जो गाय के संबंधी छोटा मोटा कार्य करके हम लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं और जंगलों में रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि हम लोग शहर वाले हैं, लेकिन हम लोगों के बीच में ये ऐसा बालक जिसने 7 दिन और 7 रात गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, तो वास्तव में हम लोगों के लिए तो सौभाग्य है, लेकिन उसके लिए, उस बच्चे के लिए तो कितना निंदनीय कार्य है। हम लोगों के बीच में जन्म लेना, हम आहिरों के बीच में। तब और चर्चा करते हुए किसी गोप ने कहा कि जैसे गजराज खेल में, जैसे गजराज तो हाथी अगर किसी कमल को उठा ले और सर पर धारण कर ले तो कितना आसान है उसके लिए। हाथी के लिए तो बड़े पेड़ को भी उखाड़ के फेंक देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वैसे ही यदि कोई गजराज है जो कमल के फूल को, सरोवर में से किसी कमल के फूल को उठा ले और उसको सिर पर धारण कर ले, तो उतने ही आसानी से इस सात साल के छोटे से बालक ने गिरिराज गोवर्धन जैसे इतने बड़े पहाड़ को 7 दिन और 7 रात तक धारण किया। तो किसी गोप ने कहा कि ये साधारण मनुष्यों के लिए ये संभव नहीं हो सकता, ये निश्चित रूप से कोई देवता है या फिर कोई स्पेशल व्यक्ति है। तो इस तरह से नंद बाबा की तरफ देखकर बार बार ये कहने लग गए। तो आपस में अभी भगवान के गुणों की चर्चा चल रही है। देखिए, हम साधारण मनुष्य जब एकत्रित होते हैं तो हम लोग सांसारिक बातें करते हैं कि जो लेटेस्ट जो न्यूज है उसके विषय में चर्चा करेंगे कि क्या लेटेस्ट है, बिहार में लालू जी क्या बोले, नरेंद्र मोदी क्या बोले, ये क्या बोले, वो क्या बोले। तो हमारे गृहस्थ जीवन में या किसी भी आश्रम में, किसी भी जीवन में हम लोग यही सब चर्चा करते रहते हैं। बड़े बड़े साधु लोग, बाहर के तथाकथित साधु लोग भी भगवान पर प्रवचन करना छोड़े सब सांसारिक बातें करते रहते हैं। लेकिन यहां पर देखिए ब्रज की क्या स्थिति है। ब्रज में यहां पर इष्टा गोष्ठी चल रही है और भगवान की सारी लीलाओं का यहां पर वर्णन किया जाएगा। अभी किसी गोप ने कहा कि आप लोगों को शायद पता ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण जब 6 दिन के थे उस समय पूतना नाम की राक्षसी, अब ये सारे जो जितने सारे असुरों का हम लोग वर्णन करेंगे ये कंस द्वारा भेजे गए थे। जब कंस को ये पता चला कि उसकी जो इष्ट देवी दुर्गा जी ने जब उसको ये कहा कि तुम्हें मारने वाला कई जन्म ले चुका है, तो उसके हृदय में एक खौफ बैठ गया, एक डर बैठ गया और चलते चलते सोते उठते जागते वो बार बार हमेशा डरा रहता था कि मेरा शत्रु कहां पर है, मुझे उसको मारना है। तब एक बार अपनी एक भरी मीटिंग में, एक भरी सभा में कंस ने अपने सारे मंत्रियों को, अब उसके सारे मंत्री कौन थे, अघासुर बकासुर उतना या जितने त्रणावत, ये सारे उसके मिनिस्टर्स थे। अक्सर ऐसा था कि राजा के जो मंत्री इत्यादि है, सलाहकार जो होते हैं, वो ब्राह्मण इत्यादि होते हैं, लेकिन इसके जो सलाहकार थे वो सारे राक्षस थे, असुरी प्रवृत्ति के। तो लोग भी जो सलाह देंगे वो असुरी प्रवृत्ति की होगी। उन सब ने कंस को सलाह दिया कि जितने सारे बालक है एक महीने के अंतराल में सबको मार दिया जाए। तो कंस ने पूछा कि कौन आएगा ये कार्य करने के लिए, तो पूतना अपने से आगे आए थे, और पूतना ने एक सुंदर गोपी का वेश धारण करके, क्योंकि ऐसी चले जाती पूतना तो शायद सारे जो गोप लोग हैं वो अपने बच्चे को छुपा लेते, लेकिन यहां पर पूतना ने क्या किया, एक गोपी का वेश धारण करके वो गई, और ब्रज में जाने के बाद सारे 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 वृंदावन में या गोकुल में घूमने के बाद वो नंबर डाल रही थी, इस बच्चे को 10 नंबर मारूंगी, इस बच्चे को 9 नंबर मारूंगी, इसको 8 पे, इसको 7 पे, इसको पहले किसको, और ऐसा करते भगवान जो थे अपनी शक्ति के द्वारा पूतना को अपनी तरफ खींच रहे थे। तो सबको नंबर देते देते वो पूछने लग, आपस में चर्चा हो रही थी कि इतनी सुंदर स्त्री आ गई थी गोकुल में कि वो गोपवासियों ने या गोकुल वासियों ने ऐसी सुंदर स्त्री किसी ने नहीं देखी थी। तो उनके बीच में चर्चा होने लग गई कि ये निश्चित रूप से ना लक्ष्मी जी होंगी। फिर किसी ने कहा नहीं ये पार्वती जी है, किसी ने कहा ये कोई अप्सरा होगी, तो किसी ने कहा नहीं ये लक्ष्मी ही है जो अपने नारायण को ढूंढने आई है। तो नारायण कहाँ इसके, अरे नंद बाबा के घर में जो नारायण शिला है ना वही इसके नारायण है, तो उनको खोजती हुई आ गई होगी, तो इसको जाने दीजिए। तो सब लोग उसको रास्ता बता रहे थे कि जाओ नंद भवन जाओ, नंद भवन जाओ, वहां पर अभी भी लाला का जन्म हुआ है, तो नंद भवन जाओ। 6 दिन के थे कृष्ण, तो पूतना वहां पर जाती है नंद भवन में, और नंद भवन में जाके ऐसा हाव भाव दिखाती है, वहां पर यशोदा रहती है, रोहिणी रहती है, और कृष्ण लाला वहां पर रहते हैं, लेकिन ऐसा भाव ऐसा दिखाती है कि अरे मेरा लाला, अरे मेरा ऐसा करते करते वो लाला को गोद में उठाने का प्रयास करती है, गोद में उठा लेती है। अब रोहिणी और यशोदा भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि अरे इतनी सुंदर कोई देव, कोई देवी आई हमारे घर पे, हमारा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो वो लोग सोच रहे थे कि काश ये हमारे बच्चे को दूध पिला देती तो हमारा बच्चा तो कृतार्थ हो जाता। तो पूतना ने अपने स्तनों पर हलाहल जो जहर लगाया था वो उसने बच्चे के मुंह में दे दिया, और फिर कुछ समय के बाद भगवान ने उसको मार डाला, भगवान ने पूतना को मार डाला। संक्षिप्त में पूतना की गति का भी वर्णन करना चाहिए कि पूतना का बहुत बड़ा सौभाग्य था कि ब्रज में, पहली बात तो ब्रज में आई थी, यदि भी असुरी थी राक्षसी थी लेकिन पूतना ब्रज में आई थी, और क्या करने के लिए आई थी, भगवान को दूध पिलाने के बहाने से आई थी। यदि भी वो जहर पिलाने वाली थी लेकिन भगवान को दूध पिलाने के बहाने से आई थी। तो भगवान ने उसकी इन दोनों कार्यों को देख कर कि क्या करके आई, कि तो ब्रज में आई है और दूसरा मेरी माँ का वेश धारण करके आई है और मुझे दूध पिलाने के लिए आई है, तो इन कार्यों को देख कर भगवान ने उसको धात्री गति दे दी। आज भी पूतना भगवान के निज धाम गोलोक वृंदावन में माता यशोदा की असिस्टेंट है, रोज कृष्ण को वो खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है, उठाती है, माता यशोदा की सहायता करती है। तो ये होने के बाद फिर किसी गोप ने कहा वाह वाह कितना अद्भुत बालक है। जब ये 3 महीने का था तो इसके करवट बदलने पर एक महोत्सव हो गया था। देखिए ब्रजवासी लोग, तो ब्रजवासियों को तो बार बार बहाना चाहिए होता था महोत्सव करने के लिए, तो कृष्ण ने करवट बदल दी तो महोत्सव हो गया, क्योंकि ये सीधे साधे लोग थे और इनके महोत्सव भी सीधे साधे होते थे, लेकिन इनमें उनको बहुत आनंद आता था। तो जब भगवान ने करवट बदल ली तो इन्होंने महोत्सव रखा और सारे गोकुल वासियों को घर पे यशोदा जी ने आमंत्रित कर दिया था। मैं जब घर पे आमंत्रित कर दिया तो सारा ध्यान तो घर पे जो अतिथि आते हैं उनका सेवा में जाना चाहिए, तो लाला को उठाया और शकट के नीचे रख दिया, और लाला उस समय सो गए थे, और जब लाला की नींद खुल गई त तो देख रहे हैं अरे बहुत बड़ा महोत्सव चल रहा है मेरे लिए, क्योंकि मेरी तरफ ही कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो लाला सोच रहे थे कि गोलोक वृंदावन छोड़कर मैं यहाँ पर आया, उनकी सेवा को स्वीकार, मेरी तरफ ही ध्यान नहीं दे रहा। तो भगवान ने हल्के से एक लात मार के, जो शकट के नीचे, जो बैलगाड़ी के नीचे भगवान को सुलाया गया था, तो बैलगाड़ी पर बहुत सारा सामान रखा गया था, दही इत्यादि बहुत सारा सामान रखा गया था। तो भगवान ने हल्के से लात मारकर वो सारा शकट उल्टा दिया। अब विचार कीजिए, एक आपके सामने ट्रक खड़ा है और ट्रक अचानक से पलटी मार जाए, अचानक से पूरा टर्न मार जाए, तो एकदम अद्भुत कार्य होगा ना। तो ये भगवान भगवान ने ये ऐसा लात मारकर वो पलट दिया। तो सारे लोगों ने बाद में अपने ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराकर और शकट की पूजा कर दी, उसको शुद्ध करा दी, भगवान की पूजा कर दी और देखा कि भाई लाला ठीक है। फिर माँ ने उसको दूध पिला दिया। फिर एक वर्ष के बाद जब लाला कृष्ण एक वर्ष के हो गए थे, उस समय तृणावर्त नाम का असुर आया था। ये सब कंस द्वारा भेजे गए थे। तृणावर्त नाम का असुर आया था और तृणावर्त एक बवंडर के रूप में आया था। तो माँ यशोदा कृष्ण को गोद में लेकर बैठी हुई थी, दूध पिला रही थी, और अचानक से कृष्ण बहुत भारी बन गए, इतने भारी बनते जा रहे थे कि माँ को उसको गोद में लेना डिफिकल्ट हो रहा था। तो माँ ने उसको इतना भारी बनते जा रहे थे कि माँ ने उसको नीचे रख दिया, और एक विचित्र ऐसी घटना हो रही लाला के साथ, ये सोचकर थोड़ा देर इंतजार किया, बाद में सोचे छोड़ो अपना काम करते हैं, ये तो ऐसा कुछ हो गया रहेगा, शायद मेरा भ्रम होगा, ये सोचकर माँ चली गई अपने काम करने के लिए। पर वहां पर भवंडर के रूप में तृणावर्त, इस गृह तृणावर्त जी आ गए। तृणावर्त ने सारे गोकुल को धूल से भर दिया, और धूल से भरते भरते वो नंद भवन में आया और उन्होंने लाला को उठा लिया। अब लाला अब बिना कृष्ण की इच्छा के कृष्ण को उठा नहीं सकता, कृष्ण की भी इच्छा थी जरा टॉप व्यू देखूं गोकुल का। तो तृणावर्त के बहाने से भगवान ऊपर चले गए टॉप व्यू देखने के लिए। तो ऊपर गए तो भगवान ने खेल खेल में उसको तृणावर्त का गला दबाकर उसको मार दिया। उसके बाद बहुत ही प्रसिद्ध लीला है कि जब सारे तृणावर्त का उद्धार हो गया, उसके बाद एक बहुत प्रसिद्ध लीला है कि भगवान सब जगह, कृष्ण सब जगह माखन चोरी करते थे, और सब जगह से सारी गोपियां रोज सारी जो गोपियां थी वो कृष्ण की कंप्लेंट लेकर रोज यशोदा माता के पास आती थी। तो माँ यशोदा किसी ना किसी बहाने से उसको सांत्वना देकर माँ यशोदा उनको वापस भेज देती थी। कभी कभी वो लोग बोलते थे कि आज इसने हमारे इतने मटके फोड़ दिए, तो माँ बोलती थी कोई बात नहीं सखी, हमारे घर पे तुम्हारे जितने मटके टूट गए हैं उससे डबल ले जाओ, ट्रिपल ले जाओ, 10 गुना ले जाओ, लेकिन हमारे लाला को चोर मत करो। क्योंकि जैसे ही वो लोग चोर बोलते थे लाला को, तो उनको बहुत पीड़ा हो जाती थी। चोर, माखन चोर जब बोलते थे उनको बहुत पीड़ा होती थी। तो एक दिन माँ यशोदा दही मत रहे, लाला सो रहे थे, सुबह सुबह का समय था, कि माँ यशोदा ने विचार किया ये लाला ऐसा क्यों है, मैं इतने लोग को कंप्लेंट लेकर आया तो निश्चित रूप से लाला कुछ ना कुछ तो करता ही होगा, तो इसका अर्थ है मेरे घर पे जो माखन बनता है उसमें स्वाद नहीं है, उससे लाला को आनंद नहीं आता है। तो यशोदा माँ ने विचार किया निश्चित रूप से जो मेरे घर की दासियां माखन बनाती इस कारण से होगा। तो यशोदा माँ ने क्या किया, पद्मगंधा गाय का दूध निकाला स्पेशल। वो पद्मगंधा गाय एक विशिष्ट प्रकार का घास ही खाती थी, साधारण घास नहीं खाती थी। उन गायों का दूध माँ यशोदा ने कृष्ण के लिए निकाला और वो गैस पर गर्म करने का रख दिया, चूल्हे पर रख दिया। और यहाँ पर आजकल के हिसाब से बोलना पड़ता है ना, तो यहाँ पर माँ यशोदा मतना चालू कर रही थी, करीब भगवान के ही गुणों को गा रही थी। देखिए ब्रज में हरेक व्यक्ति हर कोई काम करते वक्त कृष्ण के ही गुणों को गाता है, भगवान की अनंत कोटि लीला है। तो उन हरेक गुणों को कृष्ण कैसे हस्ते उनका स्मरण करते थे, कैसे क्या हरेक कार्य करते समय कृष्ण के गुणों को गाते थे, उनका स्मरण करते रहते थे। तो हमें भी यही सीखना चाहिए कि जब हम कोई भी कार्य करते हो तो भगवान का नाम तो मुख से निकल सकता है, काम तो इंद्रियों से होता है, हाथों से होता है, तो उससे भगवान का मुख तो खाली होता है ना, भगवान का नाम लेते लेते सारा घर का कार्य हो सकता है। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो ये माँ यशोदा भगवान की गुण गा रही थी उस समय, लाला ने अपनी कीर्ति को सुनकर, लाला उड़ गए, अरे मेरे बारे में गाया जा रहा है, तो मैं सुन ले। इतनी मधुरता से माँ यशोदा गा रही थी कि लाला उड़ गए। और लाला उठकर छप 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 कर छोटे छोटे लाला अपने छोटे छोटे पैरों से माँ के पास आ गए। और माँ के पास आए, माँ का पहले तो पल्लू पकड़ा, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे थे, वो तो मग्न थी, आंखें बंद थी और पूरे समाधि में भगवान के गुणों को गा रही थी। तो फिर लाला ने माँ का ध्यान बटोरने के लिए क्या किया, जो दंडी थी, जो मथनी थी, उसको जाके रोक दिया। और तब जाके माँ का जो ध्यान था वो टूट गया। तो माँ ने देखा, अरे लाला क्या चाहिए तुझे? माँ लाला ने कहा दूध। तो तुरंत माँ यशोदा ने कृष्ण को गोद में लिया, उसको दूध पिलाना प्रारंभ किया। दूध पिलाते 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 अचानक से माँ को कुछ ध्यान आया, स्मरण हुआ कि मैंने चूल्हे पर दूध रखा है पद्म गंधर्व आइटम जो कृष्ण के लिए है। तो तुरंत उसने कृष्ण को नीचे रख दिया, कृष्ण की भाषा कृष्ण को नीचे फेंक दिया, भगवान को नीचे फेंक दिया और वो दूध उठाने के लिए चले गए। तो यहाँ पर कृष्ण को बहुत गुस्सा आया, बोले मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसका लड़का बना हूं, इतने सारे योगी लोग हजारों हजारों जन्म तपस्या करके मेरे चरण कमलों के दर्शन पाने के लिए तरसते रहते हैं, शिव ब्रह्मा आदि मेरे दास है, मैं इसका ऐसा मैं इसका पुत्र बना हूं और ये मुझे छोड़कर, मुझे फेंक कर वो छोटे से थोड़े से दूध के लिए गई, इसके पास दूध की कमी है, 9-9 लाख तो गाय पड़ी है और थोड़ा सा दूध अगर चला जाएगा तो उसमें इसकी बाप का क्या जाएगा इसके। तो भगवान को गुस्सा आ गया, पर भगवान ने वहां पर एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा था और बोला कि अभी इसको सिखा देता हूँ कि मैं क्या हूँ। तो लिया भगवान ने छोटे 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 से लाला थे लिया और थड़ाम करके दे मारा उस मटके को, और सारा जो माखन था वो सारे घर में फैल गया। और माखन फैल गया तब जो लाला थे वो भी डर गए, बाप रे, तो ये तो चोरी करना अलग बात है लेकिन ये तो डायरेक्ट लाइट अली का हो गया ना हमारी चोरी का, कि ये तो हमारे हमने किया है। तो लाला सोचे कि यहाँ से भागना चाहिए। तो लाला थप थप करते करते स्टोर रूम में चले गए जहाँ पर बहुत सारा माखन पड़ा था। सोचा चलो बासी माखन खा के थोड़ा समय बिता देते हैं, और माँ को पता नहीं चलेगा, थोड़ा समय बीत जाएगा तो हम अपने फिर से अपने खेल कूद में लग जाएंगे। लेकिन भगवान चल रहे थे, तो जो त्रिविक्रम भगवान बलि महाराज के यज्ञ में जो त्रिविक्रम भगवान जो भगवान आए थे, उन्होंने अपने तीन पैरों से सारे समस्त ब्रह्मांड को माप लिया, तीनों लोगों को माप लिया, वो लाला यहाँ पर जो नीचे जो माखन पड़ा था उसको लाद नहीं पाए, और वो छप 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 करते गए उसी माखन में से, वो तो उनका रास्ता तो दिख रहा था, पैरों के निशानों से सबको रास्ता दिख रहा था। तो माँ यशोदा आई, देखी, अरे देखी तो कहाँ गए, तो पैरों के निशानों से रूम में चली गई। रूम में गई तो लाला अपने पुराना बासी माखन खा रहा है। तो माँ यशोदा जी छड़ी और लगी कई कृष्ण को पीटने के लिए जाने वाली थी कि भगवान श्री कृष्ण जो काल के भी काल है वो श्री कृष्ण डर गए, जिनका नाम लेने से सारे भक्तों का भय दूर होता है, जिन्होंने बड़े बड़े असुरों का हिरण्यकश्यप जैसे रावण जैसे बड़े बड़े असुरों का ऐसे खेल खेल में जिसका वध कर दिया, वो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर माँ के हाथ में जल्दी दंड देख लकड़ी देख कर डर गए। इनको एक और इनका नाम है चक्रपाणि, सुदर्शन चक्र है इनके सुदर्शन चक्र के सामने ब्रह्मास्त्र फेल है, लेकिन ऐसे श्री कृष्ण चक्रपाणि भगवान श्री कृष्ण माँ का दंड देख माँ के हाथ में छड़ी देखकर डर गए और भागने लगे, मतलब भागो यहाँ से, भागने लग गए। तो पहले तो घर के अंदर घूम रहे थे, फिर बाहर घूमने लग गए। अब माँ को क्रोध आ गया, माँ ने कहा नहीं, अब तो आज तो मैं इसको बांध कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज उससे बात करूंगी। तो माँ उनके पीछे दौड़ रही है दौड़ रही है दौड़ रही है, और किसी तरह से माँ ने बड़ा परिश्रम करके माँ ने उनको पकड़ लिया, कृष्ण को पकड़ लिया। तुम जैसे ही कृष्ण को पकड़ लिया तो कृष्ण ने कहा, माँ मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, आई एम सॉरी मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। तो माँ ने देखा कि अरे डर गया बेचारा, तो लकड़ी से लकड़ी तो नीचे रख दी माँ ने, लेकिन कहा कि इसको बांधना पड़ेगा, अगर आज ये माखन चोरी करता है तो कल जाके पता नहीं कितनी लड़कियों को चुराएगा, इसकी शादी कैसे हो जाएगी, शादी होने में दिक्कत हो जाएगी उसकी, इसलिए इसको बांध के रखती। तो माँ ने उखल से ही, जिस उखल से वो उस पर चढ़कर माखन को निकाल खाते थे, तो उसी उखल को भगवान को बांधना जा रहा था। तो माँ यशोदा ने खूब प्रयास किया, अपने घर की सारी रस्सियां लाई लेकिन बांध नहीं पाई। फिर सारे गाँव की स्त्री आई तो यशोदा रानी ने कहा, तुम अपने अपने घर से सारी रस्सियां लेकर हम आज इसको बांधना ही है मुझे। तो अंततः भगवान श्री कृष्ण प्रेम वश ने बंधन स्वीकार कर लिया, और फिर वो उसी बंधन को लेते लेते नल कुर और मणिग्रीव जी जो दो अर्जुन वृक्ष बने थे उनको उनका उद्धार कर दिया। उसके बाद इन्होंने बकासुर है जो बगुले के रूप में आया था उसको भी उन्होंने मार दिया। बकासुर आया था। उसके बाद बछड़े के रूप में एक बार भगवान, तो बछड़े छोटे थे तो बछड़े चला देते, बाद में बड़े होने के बाद गाय चलाने लग गए, तो छोटे से थे बछड़े चला रहे थे। तो एक बार एक असुर बछड़े का रूप धारण करके आया था उनके झुंड में, और सब लोगों ने कृष्ण के अलावा और कोई समझ नहीं रहा था कि ये वो असुर है करके। तो भगवान ने खेलते खेलते उस असुर को पकड़ा और घुमा के पेड़ों पर दे मारा। उसके बाद कोई और जो ये सब इष्टा गोष्ठी चल रही है, ध्यान रखना चाहिए, हम लोग एक इष्टा गोष्ठी में बैठे हुए हैं। इसकी इष्टा गोष्ठी में यहाँ पर नंद बाबा है, उपनंद जी है, और अन्य जो गोकुल के जितने सारे गोप लोग हैं उनके बीच में चर्चा चल रही है। ये सब घटना तो पहले हो चुकी है, ये सब आपस में चर्चा चल रही है। तो हम लोगों को भी इसी तरह से बैठकर इस तरह से कृष्ण कथा करनी चाहिए अपने जीवन में। अपने परिवार के साथ बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि सारे परिवार के लोग टीवी चालू करके सब बैठ जाए, कहानी घर घर के देखे या कोई पुराने नए पिक्चर देखने बैठे ना, कभी बैठ के कभी श्रीमद् भागवत खोले, कृष्णा बुक खोले, भगवत गीता पढ़े। इस तरह से एक छोटा सा परिवार भी है तो कृष्ण भावना भावित परिवार हो सकता है। किस तरह से एकत्रित बैठ के कृष्ण के विषय में चर्चा करनी चाहिए तो परिवार में कभी दुख नहीं होगा, हमेशा उस परिवार का मंगल होगा, उस परिवार में कभी कलह नहीं होगा। अगर उस परिवार के बीच में अगर कृष्ण है, कृष्ण की चर्चाएं हो रही है, तो उस परिवार में कभी कलह नहीं होगा, कभी उस परिवार में दुख नहीं होगा, क्योंकि परिवार डायरेक्ट भगवान के कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद किसी गोप ने कहा कि मुझे याद है कि ये जो कथाएं जब इन सारे गोपों को मालूम है, ये इनके बच्चों द्वारा बताई गई है। बच्चे जो इनके साथ कृष्ण के साथ बच्चे जाते थे ना ब्रज में खेलने के लिए, बछड़ों का गौवे चराने के लिए, तो जो लौट के आते थे तो ये सारे जो बछड़े, ये जो सारे ग्वाल छोटे छोटे जो कृष्ण के सखा थे, वे लोग अपने माता पिताओं को ये सारी चीजें बताते थे कि आज ये हो गया, आज कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ऐसा किया। तो सबसे प्रथम भागवतम इन बच्चों ने किया, लीला को देखा और डायरेक्ट टेलीकास्ट कर दिया, डायरेक्ट बता दिया। तो सबसे प्रथम भागवतम क्लास इन बच्चों का है। तो एक बार बलराम जी एक बार तालवन था, तालवन में एक असुर गधे के रूप में वहां पर रहता था तालवन में, और तालवन में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत सुगंधी फल थे, लेकिन किसी को वहां पर जाने का अधिकार नहीं था क्योंकि वहां पर एक ये जो असुर था ये वहां पर निवास करता था। तो एक बार किसी बहाने से ये सारा जो माखन चोर कमेटी है, ये लोग माखन चोर कमेटी ने निर्णय किया कि आज तालवन जाना है। तो लेकिन किसी ने कहा तालवे में तो धेनुकासुर है, तो बोले ये है ना कृष्ण बलराम, भगा देंगे उसको और हमें वो फल खाने मिलेंगे। तो सबने कहा नहीं कृष्ण बलराम जाना है जाना है जाना है जाना है जाना है, ठीक है चलो। तो सब लोग उस ताल बनने चले गए और वहां पर धेनुकासुर जी आए और धेनुकासुर ने भगवान के सहित सब पर आक्रमण किया। फिर बलराम जी ने क्या किया, बलराम जी ने उस धेनुकासुर की टांग पकड़ी, उसको घुमाई और फेंक दिया पेड़ों पर, ताल पे ताल के वृक्षों पर फेंक दिया। फिर कृष्ण ने भी ऐसे किया। फिर ये सारे जो गोप थे उनकी भी इच्छा हुई कि यार कृष्ण बलराम दोनों कर हमने एक गधे को उठा उठा के फेंक दे, तो उनकी इच्छा जानकर भगवान ने उनको शक्ति दे दी। कुछ आचार्य कहते हैं कि हरेक गोप ने एक एक गधे को उठा उठा कर सब फेंक रहे थे, तो उनके लिए खेल हो गया, वो सारे आसुर थे सब मर रहे थे, लेकिन भगवान की शक्ति से सारे जो ग्वाल बाल थे उस सब में शक्ति आ गई थी, सब एक एक गधे को उठा उठा के घुमा घुमा के फेंक रहे थे। उसके बाद बलराम जी ने प्रहलम्बासुर को मार दिया। और एक बार इसी तरह से एक बार जब सारे सब लोग जंगल में वन में थे, उस समय वन में एक आग बड़ी आग लग गई, दवावनी लग गई थी, बहुत बड़ी दवावनी लग गई थी। तो उस दवावनी से सब लोग डर गए, सब बच्चे डर गए। तो भगवान ने कहा सब बच्चों को कि अब अपने सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो। दो बार आगनी लगी थी, एक बार भगवान ने उस आंखें बंद कर ली थी, तो भगवान ने उस सारी जो दवावनी थी उसको पी लिया। तो इस तरह से भगवान की विविध चर्चाओं करते हैं। तो फिर किसी ने कहा कि याद है आप लोगों को कि कालिया नाम का एक बहुत बड़ा सर्प यहाँ से कितने समय से हमारे यमुना के जल में रहता था, लेकिन भगवान इस कृष्ण ने इस कालिया का दमन करके उसको भगा दिया। तो कालिया काफी समय से इसमें रहता था। तो एक बार भगवान ने उस कालिया के हरद में उस तालाब में कूद कर भगवान ने उस पर ना कि उसका दमन किया, उस पर नृत्य भी किया और उसका उसको व्रत से भगा दिया। तो इस तरह से जो सारे गोप है वो नंद बाबा को नंद लाला की सारी घटनाएं सुना रहे थे। और उन्होंने कहा है नंदराज तुम्हारे लड़के में एक और विशिष्ट बात तो यह है कि ये सब लीलाएं तो करता लेकिन तुम्हारे लड़के में हमारा स्वाभाविक प्रेम है, हमारे सबसे ज्यादा प्रेम सबसे ज्यादा आसक्ति हमें हमारे पुत्रों में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, सब स्वाभाविक प्रेम हमारा कृष्ण की तरफ है, कृष्ण का भी स्वाभाविक प्रेम हम लोगों की तरफ है, तो ये कैसे है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये 7 वर्ष का नन्हा सा बालक और इसने गिरिराज कैसे उठा लिया। तो नंदराज जी हमें आपके बालक के विषय में संदेह हो रहा है, इस संदेह का जरा निवारण कीजिए कि आप तो उसके पिता है, आपको कुछ तो पता होगा कि ये सब ये अद्भुत कार्य कैसे करता है। तब उन्होंने कहा, नंद बाबा ने कहा, चलिए मैं आपको आज एक रहस्य की बात बता देता हूं। बहुत पहले गर्गाचार्य जी आए थे यहाँ पर और उन्होंने कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार किया था, और उस नामकरण संस्कार के समय इन्होंने गर्गाचार्य जी ने हमें कृष्ण के विषय में कुछ बातें कही थी, वो मैं आप लोगों को एज इट इज सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि आपका जो गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपका जो पुत्र है वो हर युग में अवतार लेता है, किसी युग में श्वेत वर्ण का होता है, किसी युग में रक्त वर्ण धारण करता है, किसी युग में पीत वर्ण का आता है, और इस समय कृष्ण वर्ण को प्राप्त हुआ है। फिर कहा कि फिर गर्गाचार्य जी कहते कि पहले इसने वसुदेव जी के पास भी जन्म लिया था, इसलिए इसको लोग श्रीमान वासुदेव कहते हैं। तो गर्गाचार्य जी आगे कहते हैं कि आपके पुत्र के इतने सारे गुण हैं, इतने सारे नाम हैं कि उन नामों को साधारण लोग नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं, इनके अनंत कोटि नाम हैं, और ये सबको आनंदित करेगा और इसकी सहायता से लोग सुगमता से बड़ी बड़ी कठिनाइयों को आसानी से पार कर जाएंगे। और एक गर्गाचार्य जी ने एक और घटना बताई इसके बारे में कि पूर्व में एक बार डाकुओं ने सारे पृथ्वी पर आक्रमण, डाकू लोग हमेशा पृथ्वी पर आक्रमण करते थे, उस समय राजा उन देश का कोई राजा नहीं था, उस समय आपके बेटे ने पृथु का अवतार लेकर इन डाकुओं का वध किया था और सज्जनों को प्रसन्न करते हुए सारे पृथ्वी पर राम राज्य जैसे राज्य किया था। और तुम्हारा और गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपके इस सावले शिशु से जो प्रेम करता है उसकी स्थिति क्या है, जिस तरह से भगवान विष्णु के आदि जो देवता होते हैं उनको असुर लोग कभी आक्रमण नहीं कर सकते, एक बार भगवान विष्णु के आश्रित जो असुर जो देवता होते हैं उन पर असुर कुछ नहीं कर सकते, उसी तरह से आपके बेटे से जो प्रेम करने वाले जो लोग हैं उसको अंदर के शत्रु या बाहर के शत्रु दोनों भी कोई भी उस पर जीत नहीं सकता। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, यदि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो बाहर के शत्रु भी हमें जीत नहीं सकते, और हमारे अंदर के कौन शत्रु है कोई बोलेगा, काम क्रोध मोह मोह लत मत्सर, ये सब चीजें जो हमारे हृदय है ये भी हमें जीत नहीं सकते। चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण से ऐश्वर्य से सौंदर्य से कीर्ति से प्रभाव में ये नारायण के ही समान है, ऐसा गर्गाचार्य जी ने कहा। तब नंद बाबा कहते हैं तब से लेकर आज तक जितने सारे अद्भुत कार्य करता है घटनाएं मुझे सुनने में आती है, तुम यही समझ ये गर्गाचार्य जी की बात को स्मरण करके यही सोचता हूँ कि ये नारायण का अंश है। कुछ समय के लिए ये उसके बाद नंद बाबा की बात को सुनकर सारे जो लोग थे वे लोग नंद बाबा और उसके उनके पुत्र की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वहां से चले गए। अब शुभदेव गोस्वामी फिर से इंद्र के पास घुमाते हैं कि अब इंद्र क्या कर रहे हैं। अब ये तो अभी वहां यहाँ की चर्चा तो कर दी, अब जैसे ही भगवान ने गिरिराज जी को नीचे रखा था और सब लोग वहां से चले गए थे, उसके बाद इंद्र शर्म के मारे मुंह लटकाते हुए भगवान श्री कृष्ण को एकांत में मिलने के लिए आ गए और अपने मुकुट सहित उन्होंने भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद भगवान का प्रभाव देखकर इंद्र का जो घमंड था वो जाता रहा और इंद्र ने एक स्तुति प्रारंभ की। स्तुति तो बहुत लंबी है, मैं कुछ छोटे से इसमें अब थोड़े से इसमें क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत कम है इसलिए मैं थोड़े संक्षिप्त में स्तुति को लेना चाहूँगा। इंद्र ने कहा कि प्रभु आपका स्वरूप शांत ज्ञानमय रजोगुण और तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय, भगवान का जो शरीर है वो आप लोग या हमारे जैसा इनका शरीर नहीं है, भगवान का शरीर प्राकृत नहीं है अप्राकृत है। ऐसा नहीं कि भगवान हमारे शरीर में जिस तरह से क्या है हड्डियां है खून है पीप है और मलमूत्र है, इस तरह से हम लोगों का शरीर नहीं है, इस तरह से हमारा शरीर जैसा है वैसे भगवान का शरीर वैसा नहीं है, भगवान का शरीर दिव्य है अप्राकृत है। उनके शरीर में हड्डी ये सब नहीं है, जिस तरह से हमारा शरीर और हमारे आत्मा में और हमारे शरीर में अंतर है वैसे भगवान के शरीर और भगवान के आत्मा में कोई अंतर नहीं, भगवान पूर्ण रूप से सच्चिदानंद है, ये हमें जानना चाहिए। भगवान का शरीर पूर्ण सच्चिदानंद है, हमारे शरीर में जैसा भेद है कि हम शरीर अलग है और आत्मा अलग है, आत्मा ने इस देह को धारण किया इसलिए उसको देही कहते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है, भगवान का जो पूर्ण शरीर है वो पूर्ण चिन्ह है। उसके बाद इंद्र कहते हैं कि प्रभु जो लोग अगर आपका शरीर ही चिन्मय है तो आपका देहादि से संबंधी नहीं है और आप में काम क्रोध इत्यादि जो मनुष्य के दोष है वो भी नहीं है, भगवान में काम क्रोध मद मोह मत्सर ऐसा कुछ नहीं है, तो भगवान सच्चिदानंद है। लेकिन जो इसको नहीं समझता, इंद्र कहते हैं कि प्रभु जिसको जो इसको जो लोग नहीं समझते ये लोग माया के द्वारा ग्रसित है। फिर क्या इंद्र कहते हैं, देखिए इंद्र कौन है, 33 करोड़ देवी देवताओं का स्वामी, इसके अधीन सब कुछ है, सारा मैनेजमेंट इस संसार को उसी के अंदर है, और वो ये प्रार्थना कर रहा है। उसी तरह से ब्रह्मा द्वारा भी एक स्तुति कही गई है, ब्रह्मा स्तुति है, इंद्र स्तुति, ये दो स्तुतियां बहुत मुख्य है, इसको पढ़ना चाहिए। फिर इंद्र कहते हैं कि आप जगत के पिता गुरु और स्वामी है, आप जगत का नियंत्रण करने के लिए दंड धारण किए हुए दुस्तर काल है। देखिए कभी कभी ऐसी धारणा हो जाती है कि लोग इतने अहंकार में रहते हैं कि हमारी धारणा हमारी मृत्यु कभी नहीं होने वाली है, कभी मृत्यु होने नहीं वाली है। लोग इतने धन कमाने के पीछे या नेम फेम प्रतिष्ठा के पीछे इतने लगे हुए हैं कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारी मृत्यु होने वाली है, और काल समय बीत रहा है, उनकी जितने जीवन की आयु है वो दिन प्रतिदिन वो कम होती जा रही है, हम भूल रहे हैं। और मनुष्य शरीर का जो परम लक्ष्य है भगवान का प्राप्ति करना, उससे हम भूल जा रहे हैं। लेकिन जो लोग इस तरह से अज्ञान में है उनको दंड काल भगवान का जो काल रूप है वो देता है। कैसे, सब कुछ हर लेता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इंद्र इसी का स्मरण कर रहे हैं, आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से लीला शरीर प्रकट करते हैं, और जो लोग हमारे जैसे अपने को ईश्वर मान बैठते हैं उनका मान मर्दन करते हुए आप अनेक प्रकार की लीला करते हैं। तो इंद्र कह रहे कि प्रभु आपने हमारे जैसे शरीर धारण नहीं किया है, स्त्री और पुरुष के संसर्ग से आपने शरीर धारण नहीं किया है, आपका शरीर दिव्य है। जिस तरह से जैसे वसुदेव और देवकी के पुत्र कैसे भगवान बने, सबसे पहले भगवान वसुदेव जी के मन में आए, उसके बाद वसुदेव जी के मन से भगवान देवकी के मन में ट्रांसफर हुए, और उसके बाद देवकी के मन से भगवान देवकी के गर्भ में गए। तो यह है भगवान के इस प्राकृत जगत में आने का तरीका। तो इंद्र कह रहे कि आपने हमारे जैसे शरीर धारण नहीं किया है, और आपके जितने सारे कार्य है वो अलौकिक है, और आप अपने भक्तों को भक्तों की इच्छा से अब अवतार ग्रहण करते हैं। फिर इंद्र कहते हैं कि जो मेरे जैसे अज्ञानी है, जो अपने आप को ईश्वर मान बैठते हैं, उनका आप खेल खेल में मान मर्दन करते हैं, खेल खेल में। भगवान को कोई स्पेशल एफर्ट नहीं लेना पड़ा, इंद्र अपने सारे शक्ति लगा रहा था भगवान को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन भगवान ने ऐसा क्या किया, भगवान ने खेल खेल में गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया, और अंदर भी क्या कोई टेंशन भरा माहौल नहीं था। ऐसा होता है कि मान लीजिए कभी कोई रिलीफ कैंप है, मान लीजिए कि हरिद्वार में उत्तराखंड में जो प्रकोप हुआ था, उससे उस समय रिलीफ कैंप में यदि आप जाएंगे तो सब टेंशन में थे। अभी यहां पर रिलीफ कैंप भी था लेकिन सब लोग खुश थे, गिरिराज गोवर्धन के छत्र के नीचे थे, सब आनंद में थे। तो भगवान खेल खेल में ही भगवान ने इंद्र का मान मर्दन कर दिया। इंद्र कहता है कि हमारे इस संसार में भी मेरे जैसे मूर्ख लोग होते हैं जो अपने आप को ईश्वर मान बैठते हैं। तो उन लोगों का वे लोग जब देखते हैं कि वो लोग क्या देखते हैं कि जब आप बड़े बड़े भय के अवसर पर भी आप निर्भय रहते हैं ना, तो वो देखकर उन लोगों का जो अहंकार है, घमंड है, वो खत्म हो जाता है। और वे लोग क्या करते हैं, फिर वे आपके साधु, जो आपके जो भक्त है, साधु लोग है, उनके चरणों का अनुसरण करते हुए भक्ति करते हैं आपके। तो इंद्र आगे कहते हैं, प्रभु मैंने ऐश्वर्य के मत से मैंने आपके चरणों में जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। देखिए ये पद पोजिशन, ये धन जो बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है और उसका सही इस्तेमाल नहीं होता, उससे मत हो जाता है, और ऐसा मत हो जाता है कि हम जो हमारे सुहृद है हमारे हित करने वाले जो लोग उनकी तरफ भी हम ध्यान नहीं देते, अरे ये क्या है, ऐसी भावना हो जाती है कि कितने ये तो क्या छोटे लोग हैं। हमारे व्यवहारिक चीजों की बात की जा रही है, हमें इससे हमारे व्यवहारिक जीवन को भी सुधारना है। ये जो शिक्षा इंद्र के माध्यम से इंद्र स्तुति कर रहे हैं, इससे हमें हमें अपने व्यवहारिक जीवन को भी सुधारने का प्रयास करना है कि आप कृपा कीजिए और मुझ मूर्ख अपराधी का अपराध क्षमा कर दीजिए और ऐसी कुछ ऐसा मुझ पर अनुग्रह कीजिए कि मैं फिर से कभी ऐसे अंधा ना हो, फिर से कभी मैं ऐसे अंधा ना हो। और प्रभु आपका ये जो शरीर है वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, आप सब कुछ है, सबके कारण है और सबके आत्मा है, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। इंद्र बारंबार ऐसे स्तुति करते हैं, बारंबार नमस्कार कर रहा है, गलती हो गई उससे, भगवान को मना रहा है प्रेम से। इंद्र कोई इंद्र भी भगवान का भक्ति है लेकिन इस उस लेकिन उससे कुछ गलती हो गई है, भगवान के चरण में अपराध हो गया, इसलिए भगवान के सामने झुककर माफी मांगता है। मेरे अभिमान का प्रभु मुझे मैं अभी इंद्र कह रहे कि प्रभु मैं अपनी मैंने जो मुझसे जो गलती हुई, मैंने जो अपराध किया, मैं उस पर विचार करता हूँ ना, उस पर मुझे शर्म आती है कि मैं अंधा हो गया था। अभिमान मेरे अभिमान का तो अंत ही नहीं अंत ही नहीं था, मेरा क्रोध तो शिखर पर था और मुझे मेरा जो इस इंद्र के पद पर होने का जो अहंकार था इतना शिखर पर था कि मैं अंधा हो गया था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मैं किसी को कुछ समझ नहीं रहा था, बस अपने आप को त्रिलोकी का ईश्वर मानकर सबसे सारा कार्य मेरे हिसाब से होना चाहिए ये मैं चाहता था। और जब आपने मेरा यज्ञ जब बंद करवा दिया प्रभु, तब मेरे अहंकार को इतनी बड़ी ठेस पहुंची कि मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने अपने आप को त्रिलोकी का ईश्वर मानकर मैंने आपको आक्रमण करना चाहा, आपको सताना चाहा, आपके प्यारे ब्रजवासियों को परेशान करना चाहा, लेकिन प्रभु आपने जो किया ना वो एकदम सही किया। आपके इस कार्य करने का तरीका ही अद्भुत है प्रभु, आपने बस अपने खेल खेल में लेकिन आपने गोवर्धन धारण कर लिया और मुझे ये दिखा दिया कि तुम्हारी शक्ति कुछ नहीं है, मेरी सारी शक्ति मेरे लगाकर मैंने आपको परास्त करने का प्रयास करके मैं फेल हो गया। और जब मैंने इसी घटना से मुझे अपना वास्तविक स्वरूप मेरा जो अहंकार था नष्ट हो गया और मैं समझ गया कि प्रभु आप सर्वशक्तिमान, आप ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो ऐसा कहते हैं भगवान इंद्र ने बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम किया, तो भगवान मुस्कुराते हुए इंद्र से कहने लगे, अब आगे ना लाइन पे भगवान ने कहा, इंद्र तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति से बहुत जो उसका मत था उससे तुम पागल हो गए थे, पूरे पूरे मत वाले हो गए थे, तुम्हें थोड़ा सा भी होश नहीं था तो कि तुम क्या कर रहे हो, और इसलिए तुम पर अहेतु की कृपा करने के लिए, तुम पर अनुग्रह करने के लिए मैंने ये सब लीला रची। तो इंद्र इसके आगे कभी ऐसा कार्य मत करना, क्या इंद्र तो गलती करेंगे दोबारा, तुम भगवान ऐसे कह रहे हैं कि इंद्र तुम ऐसा कार्य दोबारा कभी मत करना, निरंतर मेरा स्मरण करो, तुम्हारा ऐसी ऐसा ऐसा कार्य ही मत करो, तुम्हारे जो व्यवहार तुम्हारा जो डीलिंग्स में तुम्हारे व्यवहारिक कार्य में ऐसा कुछ कार्य मत करो जिससे कि तुम्हें मेरा विस्मरण हो जाए। हमेशा हर कार्य में देखो कि ये मेरे द्वारा कंट्रोल्ड है और तुम मेरे मात्र प्रतिनिधि हो, मेरे दास समझ के मेरा कार्य कार्य किया करो। और इंद्र मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ कि तुम पर जो मैंने किया है बहुत बड़ी कृपा है मेरी, क्योंकि जिस पर मेरी कृपा होती है मैं उसका सब कुछ छीन लेता हूँ, इसलिए मैं तुम पर दया मेरी दया है तुम पर, कृपा है मेरी तुम पर, इसलिए मैंने तुम्हारा जो अहंकार है ना मैंने उसको छीन लिया ताकि तुम फिर से एक साधारण मेरा जो दास है वो दास के भाव से तुम ये सेवा कर सको, इंद्र पद पर रह सको। इंद्र जाओ तुम्हारा मंगल हो, मंगल हो, अब तुम अपनी राजधानी में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो, कभी मुझे भूलो मत, जब ये इंद्र ने ये जब किया, इंद्र को भगवान ने यह आश्वासन दिया कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो, उसके बाद वहां पर गोलोक से कामधेनु गाय आई थी। और कामधेनु गाय, अभी देखिए वो जो गाय थी उसको एक इंद्र के प्रति बहुत क्रोध था। क्यों क्रोध था? क्योंकि उस जब इंद्र ने अपने सारे देवताओं को कहा था कि जो ब्रज का जो धन है गौओं को, उनको सबको मार डाल, सारे गौओं को मार डाल, ऐसा किसने कहा था? इंद्र ने। ये इस बात को स्मरण करके कामधेनु गाय बड़ी क्रोधित थी। भगवान ने तो उसको माफ कर दिया, लेकिन एक कामधेनु गाय थी, इसके हृदय में एक जो दुख था, ये इंद्र के प्रति क्रोध था, वो शांत नहीं हुआ था। तो कामधेनु गाय आती है और भगवान के चरणों में कहती है कि हे सच्चिदानंद स्वरूप, आप महायोगेश्वर हैं, आप स्वयं विश्व हैं और विश्व के परम कारण हैं, आपको स्वामी के रूप में प्राप्त कर हम सनात हो गए, क्योंकि आपने हम लोगों को देखभाल करने का कार्य आपने इंद्र को सौंपा था, लेकिन उसी ने हमें मारने का षड्यंत्र रचा था, हम तो अनाथी थे, ये इंद्र के रूप में तो ये असुर था। असुर लोग भी, जो पूर्व के असुर लोग थे, वे लोग भी गोहत्या नहीं करते थे, लेकिन आज के मनुष्य, नीच मनुष्य एक गोहत्या करते हैं। बड़े बड़े जो हम लोग आज देखे, बीच में जब ये घटना हुई थी, जब गो रक्षा की बात आई थी, तब कैसे बड़े बड़े जो फिल्म स्टार से बड़े बड़े लोग हैं, किस तरह से गो हत्या का समर्थन कर रहे थे। तो कितनी, अरे शास्त्र कहता है कि जो पूर्व के जो असुर थे ना, त्रिपुरासुर को जब शिवजी जब त्रिपुरासुर जो था, उसके तीन महल थे, एक सोने का था, एक लोहे का था, एक चांदी का था। तो ब्रह्मा जी और भगवान गौ के रूप, जब भी शिवजी जब किसी भी असुर को मारते थे और जो कोई असुर मर जाता था, उसको जो त्रिपुरासुर जो था वो उस कुंड में डाल देता था, अमृत के कुंड में डाल देता था, और फिर से वो असुर जीवित हो जाता था। तो इस भगवान क्यों समझ नहीं पा रहे थे, सारे असुर मर के भी कैसे जीवित हो रहा है? तो भगवान कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा ने गाय और बछड़े का रूप धारण किया और उस महल में गए जहां पर अमृत का कुंड था, उसको पी लिया। किसी ने भी, किसी भी असुर ने उनको रोका नहीं, क्योंकि वो गाय के रूप में थे, वो चाहे तो मार सकते, देख रहे थे कि वो पी रहे हैं, लेकिन गौ के रूप में थे इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो कितनी बड़ी बात है, और वे मारे गए शिव जी के माध्यम से। जब उनका अमृत कुंड खत्म हो गया, तब शिव जी के से मारे गए, वो जान रहे थे कि हो रहा, लेकिन उन्होंने गौ माता को कुछ नहीं किया। ऐसे असुर लोग भी गौओं का सम्मान करते हैं, और हम मनुष्य नीच लोग गौ की हत्या करते हैं। अरे किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, गौ माता की तो दूर की बात है। भगवान को गोपाल क्यों कहा गया? गौओं के वो स्वामी है, गौओं के पालक है वो, इसलिए उनको गोपाल कहा गया है। तो यहां पर कामधेनु गाय भगवान से कहते कि आप जगत के स्वामी हैं, लेकिन हमारे आराध्य देव भी हैं। इंद्र होंगे त्रिलोकी के ईश्वर, लेकिन हमारे इंद्र प्रभु आप हैं, हमारे ही तो इंद्र आप ही हैं। अतः आप ही गौ ब्राह्मण और साधु जनों का आप पालन कीजिए प्रभु, हमें ऐसा इंद्र नहीं चाहिए, इसको नौकरी से निकाल दीजिए, हमें ऐसे इंद्र के इसमें नहीं रहना जो हमारी हत्या करने के पीछे जाए। अगर राजा ही प्रजा की हत्या करने जाए, उसको तो ऐसे राजा को आवश्यकता नहीं है। उस तरह से जो गौवे थी वो प्रजा थी इंद्र की, और इंद्र उन्हीं की हत्या करना चाहता था। और हम ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आए हैं, भगवान से क्या कहते हैं कामधेनु, हम ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आए थे। वास्तव में सिचुएशन इतनी बिगड़ गई थी कि इंद्र जैसे इतने बड़े व्यक्ति से इतनी बड़ी गलती हो गई थी, तो ब्रह्मा जी भी थोड़े डर गए थे कि बाप रे बेचारे का पोस्ट चला जाएगा भाई। तो फिर जब इंद्र माफी मांगने के लिए जाने वाले थे, तो ब्रह्मा जी ने कामधेनु गाय को कहा कि बेटी तू भी चले जा और इंद्र की थोड़ी रक्षा कर लेना, इंद्र को बचा लेना, नहीं तो वो बेचारे का पोस्ट चला जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। तो फिर कामधेनु गाय कहती है कि ऐसा, इस तरह से स्तुति कर कामधेनु गाय ने अपने दूध की धारा से भगवान का अभिषेक किया। तो वो है सुरभि कुंड, वो इंद्र के इंद्र के द्वारा, इंद्र ने भी उस समय अभिषेक किया, इंद्र डरे हुए थे, सुरभि माता के अभिषेक, सुरभि माता ने पहले अभिषेक किया, तो इंद्र, इंद्र को भी अभिषेक करने, इंद्र तैयारी कर कर तो आ गया था, अभिषेक की सारी तैयारी करके इंद्र आया था। क्या तैयारी किए थे? ऐरावत के सुन में वो आकाश गंगा का पानी लेकर आए थे, सोचे थे कि किसी तरह से भगवान, अगर सब कुछ ठीक रहा तो भगवान का अभिषेक करूंगा। लेकिन यहाँ पर इंद्र भगवान डर गए, कामधेनु ने तो इंद्र को फटकार कर और भगवान की स्तुति करते हुए कामधेनु ने तो भगवान का अभिषेक कर दिया, लेकिन इंद्र डरा हुआ था। उस समय वहां पर सारे देवता आ गए थे, सारे देवता, इंद्र की माताएं भी आई थी, तो अपनी मां अदिति दीति जितने सारे माताएं वो भी सब वहां पर आई थी। तो अपनी माता के आदेश, माता के आदेश पाकर भगवान इंद्र ने ऐरावत की सहायता से भगवान का अभिषेक किया। नारद, तुम्बुरु, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण पहले से अगर आ गए थे और सब लोग वहां पर जोर से भगवान के गुणों को गाने लग गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से भगवान के यश को सब लोग गा रहे थे और कुछ अप्सराएं थी वो भगवान की प्रसन्नता देखने के लिए वहां पर नृत्य कर रही थी। और उसमें जो मुख्य मुख्य जो देवता थे, जैसे जो शिवजी, शायद शिवजी है या मुख्य मुख्य देवता थे, उन्होंने भी भगवान की स्तुति की और भगवान को मनाया इंद्र की तरफ से। टीम वर्क था पूरा, सब लोगों ने इंद्र की, इंद्र के लिए भगवान को, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की स्तुति की, सारे मुख्य मुख्य देवता भगवान की स्तुति की। और जैसे ही भगवान को इंद्र के रूप में जब उनका अभिषेक किया गया, कुछ समय के लिए इंद्र को पोस्ट से हटा दिया गया और भगवान को इंद्र के रूप में स्थापित कर दिया गया कि भगवान आप ही इंद्र हैं वास्तव में। और इंद्र ने भी ये सोच के पूजा कर ली कि प्रभु आप ही हमारे इंद्र हैं, मैं अपने सेवा अच्छे से नहीं कर पाया तो आप ही हमारे इंद्र हैं। तो जब जब जैसे भगवान इंद्र के पोस्ट पर आ, इंद्र के रूप में अभिषेक किया गया, तो प्रकृति में बहुत सारे बदलाव हो गए। क्या क्या हुआ? अपने आप जो गौवे थी वो अपने आप, जो सारी गौवे थी वो अपने आप दूध देना चालू कर दी, अपने आप उनकी थनों से दूध दूध निकलेंगे और सारी जो पृथ्वी थी वो गिली हो गई। वृक्षों से अपने आप जो मधु था वो बहने लग गया और बिना जोते हुए जो पृथ्वी अपने आप अनाज देने लग गई, बिना जोते हुए जो अपने आप से बहुत सारे अनाज देने लग गई। और पर्वतों में जो छिपे हुए जो मनी माणिक्य है वो सब बाहर निकला, जितने सारे रत्न होते हैं ना पर्वतों में वो सारे अपने आप बाहर बाहर निकला। ये सब भगवान को इंद्र बनाने का परिणाम है। और जितने सारे जो जंगली जानवर हैं उनके, उनमें एक क्रूरता रहती है हृदय में कि वो अपने से छोटे जानवर को खा जाते हैं, लेकिन भगवान का इंद्र बनते ही ये जो क्रूरता थी उनके हृदय से ये समाप्त हो गई। और जो मनुष्य लोगों में भी आपस में बहुत प्रेम हो गया, वैर भाव खत्म हो गया। इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी गोविंद का अभिषेक किया और उनकी अनुमति प्राप्त होने पर भगवान और सारे जो भगवान की अनुमति प्राप्त होने पर सारे जो देवता थे, सारे गंधर्व थे, सब लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। तो हमें इस जो ये जो भगवान की गिरिराज गोवर्धन धारण की जो लीला है, इससे हमें एक शिक्षा लेनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो तीन प्रकार के लोग संसार में, एक जो घटना को देखकर समझ जाते हैं, दूसरी घटना की अनुभूति करके समझ जाते हैं, और तीसरे वो लोग जो मूर्ख होते हैं, वे लोग देखकर भी अनुभूति करने के बाद भी नहीं समझते। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे भगवान इंद्र के साथ ये घटना हुई और इससे ये चीज पता चले कि भगवान कौन है और देव और देवताओं उनके साथ क्या संबंध है। एकले ईश्वर कृष्ण आय सब भृत्य, एकमात्र कृष्ण ही ईश्वर है और सभी उनके दास हैं। ये चीज इस लीला से स्थापित हो जाती है। उसके बाद कैसे जिस तरह से इंद्र आदि देवता भगवान की, इंद्र अपनी गलती का एहसास करते हैं इंद्र एक अपने आप को ईश्वर मानकर भगवान का तिरस्कार किया था, उसी तरह से हम भी अपने अपने जीवन में एक अपने आप को ईश्वर अपने आप को ईश्वर समझते हैं, मैं कुछ हूं। ये अहंकार है हम लोग का। अहंकार ये होना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूं, सबसे बड़ा अहंकार ये होना चाहिए मनुष्य का। अगर अहंकार होना ही चाहिए, फॉल्स ईगो ना, हमारे फॉल्स ईगो है। लेकिन ये फॉल्स है, ईगो क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूं। फॉल्स ईगो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, समझ रहे कि मैं इसका स्वामी हूं, मैं उसका ये हूं, ये फॉल्स ईगो है। लेकिन ईगो क्या है, मैं कृष्ण का दास हूं। भगवान भी कहते हैं गीता ममय वांश जीव लोके जीव भूता सनातना, कि हम जो जीव जो है वो मेरा अंश, भगवान कहते हैं।